प्रदेश है आज के मुख्य समाचार विशारी जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में आज 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज, विक्टोरिया में आंकड़ा 17,500 के पार। भारत में एक हफ्ते में बढ़े 285% कोरोना मामले और महामारी के चलते पुरुष ए लीग स्पर्धा घटकर रह गई आधी। और अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में आज 35,054 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में आज 8 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। बीते दिन राज्य में 108,844 कोरोना परीक्षण किए गए थे। ये पिछले दिन के मुकाबले 11,923 अधिक मामले हैं। न्यू साउथ वेल्स में इस समय 1,491 कोरोना मरीज अस्पतालों में देखभाल पा रहे हैं। राज्य के 16 साल से अधिक के 95% निवासियों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक और 93.6% लोगों को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। वहीं 12 से 15 साल के आयु वर्ग में 81.4% निवासियों को टीके की पहली खुराक और 78% को पूर्ण टीका प्राप्त हो चुका है। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने आज सुबह कहा कि वे समझते हैं कि लोग चिंतित भी हैं और तनाव में भी।
I appreciate and understand that many people across New South Wales are feeling anxious and concerned, but we will get through. We've got through the last 2 years and we'll get through this difficult time as well. Every challenge that has come our way, our state has stood tall. We have made the efforts to get our state through this difficult time and we'll continue to do that as we move through the coming weeks and months.
वही फ्रंटलाइन कर्मी दिन में 18 घंटे तक काम कर रहे हैं ताकि कोरोना के मौजूदा प्रकोप से निपटा जा सके। स्वास्थ्य व्यवस्था के कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। न्यू साउथ वेल्स में गहन चिकित्सा केंद्र में मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले सितंबर माह में प्रकोप के चरम पर ICU में 244 मामले भर्ती थे। राज्य में बढ़ते प्रकोप के बीच प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने फ्रंटलाइन कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है।
But I want to begin by thanking all our frontline staff, particularly our health staff right across the state, who are making an enormous effort, enormous sacrifices to keep people safe, to help people through either vaccinations, through our booster shot program, but importantly making sure, as we're seeing greater pressure on the health system across the board, that we are keeping people safe in what is a difficult time for our state. And I appreciate and understand.
वहीं स्टाफ की कमी के बीच चिकित्सीय कर्मियों जैसे दाई को वे काम भी करने पड़ रहे हैं जो उनके हैं ही नहीं, जैसे कि वो दवाएं मरीजों को देना जो आम तौर पर सीनियर स्टाफ के लोग ही दे सकते हैं। एक डॉक्टर जो अपना नाम नहीं बताना चाहती कहती हैं कि सिडनी के जिस अस्पताल में वे काम करती हैं वहां प्रबंधन अब उन कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को काम करने देने की अनुमति पर विचार कर रहा है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे। उधर विक्टोरिया ने आज 17,636 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज कोरोना के चलते 11 मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। अस्पतालों में भर्तियां 75 से बढ़कर 591 हो गई हैं, जिनमें 53 लोग गहन चिकित्सा केंद्र में भी हैं और 20 वेंटिलेटर पर। राज्य में हुई 60,000 जांचों में लगभग हर तीसरी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। कल के बनिस्बत आज 3,616 ज्यादा मामले सामने आए हैं और राज्य की कोरोना जांच व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। करीब 40 राज्य संचालित जांच केंद्र सुबह 9 बजे तक ही अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए जांच रोकनी पड़ी। इसके अलावा 54 निजी पैथोलॉजी जो राज्य की एक तिहाई जांच प्रक्रिया संभाले हुए हैं, ने 9 जनवरी तक सभी जांच प्रक्रिया स्थगित कर दी हैं ताकि हाथ में जो नमूने हैं पहले उनके नतीजे दिए जा सकें। विक्टोरिया के कोविड कमांडर जेरोइन वीमर का कहना है कि विक्टोरियाई निवासियों के लिए इस सप्ताह के अंत तक 34 मिलियन रैपिड एंटीजन टेस्ट किटें उपलब्ध कराई जाएंगी। एक बार किटों की उपलब्धता नियमित हो जाए उसके बाद एक वेबसाइट जारी की जाएगी, जिस पर श्री वीमर का कहना है कि घर पर किए जांच के नतीजे अपलोड किए जा सकेंगे जो आधिकारिक गिनती में भी शामिल किए जाएंगे। किटों की उपलब्धता बीते दिनों में समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। कहीं कहीं पर एक किट अपने मूल्य से 5 गुना दाम पर भी बिक रही है। श्री वेमर उन विक्टोरियाई निवासियों से जिन्हें कोरोना लक्षण नहीं दिख रहे हैं एंटीजन टेस्ट करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि जांच व्यवस्था पर भार कम किया जा सके।
We do not have the bandwidth, we do not have the discretion to be offering travel tests or various other tests for people to reassure themselves that they're still okay. That's what the rapid antigen testing system is now for.
मेलबर्न में एम्बुलेंस गाड़ियों की तीव्र मांग ने सेवा अधिकारियों को कोड रेड जारी करने पर मजबूर कर दिया है। आज सुबह 12 से 3 बजे के बीच एम्बुलेंस सेवा ने सलाह जारी की कि तीव्र मांग के चलते मेलबर्न में एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हो सकती है। विक्टोरिया एम्बुलेंस सेवा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता उन विक्टोरियाई निवासियों तक मदद पहुँचाने की है जिनका जीवन खतरे में हो। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर स्थिति आपातकालीन नहीं है तो वे नर्स ऑन कॉल को 1300-6060-24 पर या अपने स्थानीय जीपी से संपर्क करें। न्यू साउथ वेल्स के लेबर नेता क्रिस मिन्स ने राज्य के प्रीमियर श्री पेरोटे से जोर देकर कहा है कि वे तार्किक उपायों पर ध्यान केंद्रित करें और राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह मानें।
Yeah, look, the first and foremost thing we would do is listen to the Chief Health Officer, Kerry Chant. We can't forget the fact that in concert with the former Premier, Gladys Berejiklian, the Chief Health Officer guided us through very treacherous waters over the last 2 years. I would urge the New South Wales Premier, listen to Kerry Chant, embrace common sense solutions to these pressing public policy problems. Obviously, the mask mandate withdrawal and the QR code changes on the 15th of December were a mistake. The Premier's virtually acknowledged that. We can't afford many more mistakes. We have to get it right over the coming weeks.
आज दोपहर में आगामी मंत्रिमंडल बैठक के एजेंडा पर काम करते हुए प्रधानमंत्री कम आय वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किटों पर रियायत मुहैया कराने पर विचार करेंगे। इस योजना के अंतर्गत जन कल्याण भत्ता या पेंशन पाने वाले लोगों को कैश रकम मिलेगी ताकि वे 5 रैपिड जांचों तक खरीदी कर सके। रैपिड टेस्टों की ये गिनती बढ़ भी सकती है अगर राज्य सरकारें इस रकम में योगदान देने को तैयार हों। इस भत्ते को पाने के लिए पात्रता आवश्यकताएं पूर्ण होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये घोषणा भी कर सकते हैं कि प्रदेश संचालित जांच केंद्रों पर ये किटें मुफ्त भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कनाडा ने मौलिक अधिकारों पर प्रथम राष्ट्र के उन बच्चों को नुकसान भरपाई की रकम चुकाने का फैसला लिया है जो अपने माता पिता से छीन कर सरकारी व्यवस्था में डाल दिए गए थे। ये रकम 40 बिलियन कैनेडियाई डॉलर की करीब है। इस नए करार में 20 बिलियन डॉलर उन हजारों लाखों प्रथम राष्ट्र बच्चों के लिए भी शामिल हैं जो अपने परिवारों से दूर तो किए गए पर फिर उन्हें या तो सेवाएं नहीं मिली या मिलने में देर हुई। बचे हुए 20 मिलियन डॉलर अगले 5 सालों में सेवाओं में सुधारों के लिए रखे गए हैं। कनाडा के मानव अधिकार आयोग ने बार बार कहा है कि बाल एवं परिवार सेवाएं प्रथम राष्ट्र के बच्चों के साथ भेदभाव करती हैं। प्रथम राष्ट्र की क्षेत्रीय प्रमुख सिंडी वुडहाउस का कहना है कि कनाडा ने अंततः उनके लोगों को देखा, सुना और स्वीकारा है।
To address the poverty in our nations, and no amount of money will ever be the right amount, nor will it bring back a childhood lost. But today is about acknowledgement, about being seen and heard.
और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में बुधवार को तेजी से उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 55.4% उछाल के साथ कोविड-19 के 58,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2,00,000 के पार हो चुकी है। पूरे देश में अभी एक्टिव मामलों की कुल संख्या 2,14,004 है। वहीं एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में रिकवरी रेट अभी 98.01 है। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 2,135 मामलों में से 828 ठीक हो चुके हैं। 23 से 29 दिसंबर के बीच रोजाना दर्ज हुए कोविड मामलों की तुलना में 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच दर्ज हुए कोविड केसों में अंतर इतना बड़ा हुआ है कि एक ही हफ्ते में दैनिक औसत 285% का उछाल दर्ज कर रही है। देश में बीते दिन कोरोना के चलते 534 लोगों की मृत्यु भी हुई। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने, फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट केंद्र और कपूरथला व होशियारपुर में 2 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश भर में संपर्कों को बेहतर करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के तहत पंजाब में भी विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने की पहल की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन्हीं प्रयासों को जारी रखने के क्रम में प्रधानमंत्री पंजाब में 2 मुख्य सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखेंगे। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.95 रुपये और 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। महामारी और कोरोना प्रतिबंधों के चलते ए लीग पुरुष स्पर्धा के मैच घटकर आधे ही रह गए हैं, जिनमें 3 मैच संभवतः सिडनी और मेलबर्न में खेले जाएंगे। वेस्टर्न यूनाइटेड, मैकार्थर FC और सेंट्रल कोस्ट सभी के खिलाड़ी कोरोना चपेट में हैं और इस हफ्ते के मैच नहीं खेल सकेंगे। पिछले 15 दिनों में ये मैच 11 बार रद्द हो चुके हैं। लीग प्रमुखों का मानना है कि कम से कम ये 3 फिक्स्चर तो खेले ही जा सकते हैं, जिसके बाद तालिका अग्रणी मेलबर्न विक्ट्री और एडिलेड यूनाइटेड का आमना सामना होगा। और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में तेज धूप खिली रहेगी, यहां अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल बारिश की आशंका जताई जा रही है, यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल उमस के साथ बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में तेज बरसात रह सकती है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल बारिश का अनुमान है, यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल बरसात के आसार हैं, यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई है, अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा, दिल्ली का अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।